हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय विश्वनाथ परमहंस प्रिय राज काचार्य स्तुतल श्री श्रीमद ऋषि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की। जय विश्वनाथ परमहंस प्रिय राज काचार्य स्तुतल श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा श्री गौर भक्तबिंद की। मथुरा वृंदावन धाम की। गंगा माई जमुना माई की। श्याम कुंड राधा कुंड की। गिरिराज गोवर्धन जी की। निताई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 टेक्स्ट नंबर 18 चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 37। तो इससे पहले के तीन चार श्लोकों में परपोर्ट नहीं है, 37 पढ़ता हूँ। 37 ही है। श्री ययाति उवाच अतृप्त अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन् दुहितरी स्म व्यवस्थस्ताम यथा कामं वयसा य अभिधास्यति। श्री ययाति उवाच अतृप्त अस्मि अद्य कामान् अतृप्त अस्मि अद्य कामानां ब्रह्मन् दुह्यतरी स्म ब्रह्मन् दुह्यतरी स्म ते। वयस्तस्ताम यथा कामम् वयस्तस्ताम यथा कामन् वयसा च अभिधास्यति वयसा च अभिधास्यति।
पढ़िए।
माताजी श्री ययाति उवाच। राजा ययाति ने कहा, अतृप्तः असंतुष्ट अस्मि, मैं हूँ अद्य आज तक कामानाम अपनी विषय वासनाओं को तृप्त करने के लिए ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण दुहितरी पुत्री के संबंध में स्म भूतकाल में ते तुम्हारी वयस्तामान आदान प्रदान करो यथा कामम। जब तक तुम विषयी हो वयसा युवावस्था जवानी से यह अभिधास्यति जो तुम्हारी वृद्धावस्था से अपनी युवावस्था को बदलने के लिए इच्छुक हो। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति को बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। मेरे साथ तो रहिएगा। राजा ययाति ने कहा, हे विद्वान पूज्य ब्राह्मण, अभी भी तुम्हारी पुत्री के साथ मेरी कामेच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं। तब शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, चाहो तो तुम अपने बुढ़ापे को किसी ऐसे व्यक्ति से बदल लो जो तुम्हें अपनी युवावस्था देने को तैयार हो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब राजा ययाति ने कहा कि उसकी विषय वासनाएं शुक्राचार्य की पुत्री के साथ भोग करने से पूरी नहीं हुई, तो शुक्राचार्य ने देखा कि यह तो उसकी पुत्री के लिए अहित में है। ययाति वृद्धावस्था में रहने लगे क्योंकि तब उनकी कामिनी पुत्री की भोगिच्छा पूरी नहीं होगी। अतः शुक्राचार्य ने अपने दामाद को यह वर दिया कि वह अपने बुढ़ापे में किसी भी जवानी से बदल ले। उन्होंने संकेत दिया कि यदि ययाति का पुत्र अपनी जवानी देकर ययाति का बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो ययाति देवयानी के साथ भोग कर सकेगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। भागवतम का नवम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 32 पर कल क्लास हुआ था। क्योंकि बीच के श्लोकों में तात्पर्य नहीं है इसलिए 37 श्लोक लिया। नौम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है क्योंकि इसके तुरंत बाद राम जी अवतार लेते हैं। भगवान राम का अवतार सूर्य वंश में हुआ था, फिर उसके बाद चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन है क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हुआ रात को 12 बजे। तो ययाति ये महाराज नहुष के पुत्र थे। महाराज नहुष के 6 लड़के हैं, यति ययाति संयाति आयति बियति और कृति। तो बड़ा लड़का यति तो महाराज नहुष ने उसको राजगद्दी पर बैठाना चाहा, लेकिन यति ने कहा मैं भजन करूंगा। महाराजा नहुष बहुत बड़े तपस्वी थे। एक बार वृत्रासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा और इंद्र को पानी के अंदर छिपना पड़ा। तो स्वर्ग में कोई इंद्र की गद्दी पर था नहीं, तो देवताओं ने महाराज नहुष से कहा कि आप इंद्र बनिए, गद्दी पर बैठो, हम अपनी सारी शक्ति आपको देंगे और ऐसी शक्ति आपको देंगे जब भी आप किसी की तरफ देखोगे तो उसकी भी शक्ति को आप छीन लोगे, तेज को। और नहुष को स्वर्ग का राजा इंद्र बनाया। एक दिन इंद्र की पत्नी शची इंद्राणी पर इनकी नजर पड़ी नहुष की, तो मन खराब हो गया। क्योंकि राजा हैं तो आदेश दिया कि इंद्र की पत्नी शची को कहो कि हमारे महल में आ जाए। अब वो इंद्र की पत्नी है, पतिव्रता नारी है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, अपने गुरु बृहस्पति के पास गई, कहा कि महाराज नहुष ऐसा ऐसा कहते हैं। तो गुरु बृहस्पति ने कहा ये तो ठीक नहीं, आप अपने पति का पता लगाओ कि इंद्र इस वक्त कहाँ है, क्योंकि वो जल के अंदर छुपे हुए थे पानी के अंदर। और महाराज नहुष को ऐसा कहो कि मुझे कुछ समय दो, मैं आऊंगी तुम्हारे महल में लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए। नहुष ने कहा ठीक है, तुमको हम मोहलत देते हैं, टाइम देते हैं, तुम अपना काम कर लो। तो इंद्राणी ने इंद्र का पता लगाया और वो अपने पति के पास गई, अपने पति से कहा महाराज नहुष का ऐसा ऐसा आदेश है कि हमारे महल में आओ। तो इंद्र ने कहा तुम राजा नहुष से कहना कि मैं तुम्हारे महल में तब आऊंगी जब बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्वी लोग मेरी पालकी उठाएंगे। और उसने राजा नहुष से ऐसा कहा। नहुष ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने जितने महात्मा तपस्वी लोग थे सबको पालकी पर लगा दिया, कहा कि नहुष को कंधे में पालकी में उठा के मेरे महल में ले गया। नहीं, नहुष से कहा जब इंद्राणी ने कि आप मेरे पास मुझे लेने के लिए आएंगे तो पालकी में बैठ के आएंगे, तो पालकी ले जाने वाले लोग तपस्वी होने चाहिए, ऋषि मुनि। तो नहुष ने पालकी तैयार की, सब ऋषि मुनियों से कहा, अगस्त ऋषि से सबसे, उठाओ मेरी पालकी। अब वो लोग सब महात्मा लोग हैं, भजनानंदी लोग हैं, अपनी मस्ती में चल रहे थे, और नहुष के मन में काम इच्छा है, वो जल्दी जाना चाहता है। तो बोला जल्दी चलो सर 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 सर। वो ऋषि किसी की सुनते नहीं, अपनी मस्ती में भजन करते हुए जा रहे हैं। तो राजा नहुष ने अगस्त ऋषि के सर पर लात मार दिया, ताकि जल्दी नहीं चलता सर सर, शीघ्र चलो जल्दी चलो। अगस्त ने कहा मैं तुझे अभी बताता हूं क्या होता है जल्दी चलो। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया, सर सर कहने का बहुत शौक है ना, तो मैं तुझे सर्प बना देता हूं, अजगर बना दिया। अब रोने गिड़गड़ाने लगा, मेरी सर्प की योनि से अजगर की योनि से कैसे मुक्ति होगी। तो ऋषि अगस्त ने कहा जब तुम किसी से धर्म का संवाद करोगे और उस धर्म के संवाद में तुम्हारे प्रश्नों का सही सही जो उत्तर दे देगा तो उसका उत्तर सुन के तुम इस योनि से मुक्त हो जाओगे। श्री राधा राज बिहारी भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, गौ नेताय की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो ये अजगर बने हुए थे और पांडव लोग वनवास में वन में विचरण करते थे। तो एक दिन इस अजगर ने भीम को पकड़ लिया और ऐसा पकड़ा, फंदा मारा, भीम ने बहुत ताकत लगाई, छुड़ा नहीं सका अपने को। और बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम कहाँ गया, तो ढूंढते ढूंढते भीम के पास आया। युधिष्ठिर महाराज ने सर्प से कहा छोड़ दो मेरे भाई भीम को। कहा नहीं, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने से इस अजगर ने पूछा नहुष ने कि ब्राह्मण कौन है और सबसे मुख्य जानने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मण की योग्यता बताई, जो समाजशील हो, संयमी हो, इंद्रिय जीत हो, शांत हो, समाशील हो, तपस्वी हो, और जानने वाले तत्व के बारे में कहा कि सबसे जानने वाला तत्व भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है, जिनको जानने के बाद जीव इस मृत लोक में वापस नहीं आता। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने धर्म का संवाद किया तो अजगर की योनि से मुक्त हो गए और सीधे स्वर्ग चले गए। महाभारत का ये उपाख्यान है। तो यति तो भजनन, उनका बड़ा लड़का भजन करने लगा, ययाति को इस भूमंडल का सम्राट बनाया। भागवत में जितने भी राजाओं का वर्णन है ये सब भूमंडल के सम्राट थे, खाली भारत के नहीं, या नेपाल के नहीं, या भूटान के नहीं, पूरी दुनिया के सम्राट। और अपने चार भाइयों को, बड़ा भाई तो भजन में चला गया, और चार भाइयों को चारों दिशाओं का शासन सौंपा। राजा विश्वपरवा की लड़की शर्मिष्ठा से विवाह किया और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं उनकी बेटी देवयानी से विवाह किया। आज का जो श्लोक है वो ये है, पहले की कथा आपने सुनी होगी भक्तों से कि देवयानी को शर्मिष्ठा ने एक कुएं में धकेल दिया, फिर राजा ये याति शिकार खेलते हुए आए, उनकी नजर उससे पड़ी, अपना दुपट्टा फेंका नीचे तो उसको ऊपर उतारा। तो देवयानी ने ये याति से कहा कि आपने मेरा हाथ पकड़ा, अब छोड़ना मत। देखो इससे कई शिक्षा मिलती हैं। इसका मतलब ये होता था कि पहले शादी से पहले लड़की का हाथ कोई पकड़ता नहीं था, जितने भी शास्त्रों में पुराणों में कथाएं आती हैं उसमें यही कथा आती है। जिस किसी ने कहा, जैसे भगवान कृष्ण ने जब जाम्बवती से विवाह किया तो जाम्बवती का हाथ पकड़ा, वो शमंतक मणि से खेल रही थी जब दशम स्कंद में कथा है, तो जामवान ने कहा भगवान से, मेरी लड़की का हाथ किसी ने पकड़ा नहीं अभी तक, आपने पकड़ा है तो आप हमेशा पकड़ के रखो। तो देवयानी ने कहा किसी ने मेरा हाथ पकड़ा नहीं, अब छोड़ना मत। राजा ने कहा मैं क्षत्रिय हूं, तुम ब्राह्मण की बेटी है, बेमेल विवाह है। देवयानी ने अपनी समस्या बताई, कहा कि मेरा विवाह ब्राह्मण से हो नहीं सकता क्योंकि बृहस्पति के पुत्र कच्छ का मुझे श्राप है। देवताओं ने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ से कहा कि जब देवताओं दैत्यों की लड़ाई होती है तो शुक्राचार्य अपने दैत्यों को फिर जीवित कर देते हैं क्योंकि मृत संजीवनी विद्या जानते हैं, जिसको भी हम मारते हैं वो तुरंत जिला देते हैं। तो कच्छ से कहा तुम भी कुछ ऐसी विद्या सीख के आओ ना, हमारी पार्टी में भी कोई मरेगा तो तुरंत तुम जिला दो। अब ये विद्या सिर्फ शुक्राचार्य जानते हैं। तो कच्छ शुक्राचार्य के यहां मृत संजीवनी विद्या सीखते थे और ये उनकी पुत्री देवयानी उस पर मुग्ध हो गई कच्छ पर। जब कच्छ ने सब विद्या सीख ली अपने घर को आ रहे थे तब देवयानी ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप मेरे साथ विवाह करो। कच्छ ने कहा तुम मेरी गुरु की बेटी है, गुरु पुत्री हो, मैं गुरु पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। तो बार बार कहने पर भी कच्छ नहीं माना तो देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया, मेरे पिता ने तुमको जितनी भी विद्याएं सिखाई मृत संजीवनी की वो एक भी विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी, निष्फल हो जाएगी। कच्छ ने कहा अगर तू मुझे श्राप देती है तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरा विवाह कभी ब्राह्मण कुल में होगा ही नहीं। और राजा ययाति को ये बात देवयानी ने कहा कि मेरा विवाह कभी ब्राह्मण से हो नहीं सकता, और राजा ने समझा यही भगवत संयोग है और देवयानी के साथ विवाह किया। और शुक्राचार्य ने कहा कभी दूसरी लड़की पर नजर मत रखना, हमारी बेटी की तरफ देखते रहो बस। हर माँ बाप की इच्छा होती है उसकी लड़की भलाई किधर भी देखती रहे लेकिन तुम हमारी लड़की की तरफ देखते रहो, ये सिद्धांत है। तो एक दिन शर्मिष्ठा ने, देवयानी के पुत्र थे वो खेल रहे थे, शर्मिष्ठा के मन में भी इच्छा हुई मेरी भी औलाद हो, वो राजा ययाति के पास गई, कहा मुझको भी आप पुत्रवती बनाइए। तो छुप करके विश्वप्रभा की बेटी जो शर्मिष्ठा है उसका भी संग ययाति ने किया तो उससे तीन लड़के उनके हुए। और देवयानी को जब ये बात पता लगी कि ये तो किसी दूसरी पत्नी से भी इसके बच्चे हैं और जाके अपने पिता को ये बात कही, तब शुक्राचार्य ने श्राप दिया, तुम अपनी जवानी पर बहुत अहंकार है, इसे श्राप दिया, बूढ़े हो जाओ हमेशा। अब जब श्राप दिया तो ये श्लोक है जो आज का। इस श्लोक में ययाति ने शुक्राचार्य से कहा, श्राप तो तुमने हमको दे दिया, लेकिन इसमें नुकसान किसका है? तुम्हारा, क्योंकि बुढ़ापे अगर मैं रहूंगा तो तकलीफ में तुम्हारी बेटी रहेगी, और तुम्हारी बेटी ने अभी तक कोई भोग पूरे किए नहीं, तो शुक्राचार्य को टेंशन हुआ अपनी बेटी का। इसलिए श्लोक में कह रहे हैं, ठीक है हमने श्राप दे दिया, लेकिन एक वरदान और देते हैं, अगर कोई बुढ़ापा तुम्हें वापस कर दे या कुछ दिन के लिए उधार दे दे, तुम्हारा बुढ़ापा ले ले अपनी जवानी दे दे, तो तुम ये काम कर सकते हो। किसके लिए? सिर्फ भोग वासनाओं के लिए। अपने लड़के यदु से कहा, यदु ने कहा ये चक्कर में मैंने पड़ता था, अच्छे खासा जवान आदमी, मैं बूढ़ा हो जाऊं और तुम बूढ़ा होकर के जवान होना चाहते हो और मैं जवान होकर बूढ़ा हो जाऊं, उसने मना कर दिया। फिर तीन लड़कों के पास और गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो छोटे वाले के पास गए, उसका नाम था पूरु। तो पूरु ने कहा मैं दूंगा अपने जवाने से। हजारों वर्षों तक देवयानी के साथ भोग किया। फिर बाद में एक बकरा बकरी की कथा सुनाते हैं उसको, और बाद में कहते हैं तू बकरी है मैं बकरा हूं। चेतो हरा युवत सुहृदो नकुला सदबांधवा प्रणयन भिगरस्य भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तुरलास्तु रंगा सम्मीलने नयनयो नहि किंचिदस्ति। महाराजा भोज के दरबार में एक बार एक विद्वान चोर घुस गया और उनकी पलंग के नीचे जाके छुप गए। विचार करने लगा कब राजा सोए मैं इसका मालमत्ता साफ करूं। अब राजा श्लोक लिख रहे थे जो श्लोक हमने पढ़ा, चेतो हरा युवत सुहृदो नकुला, कि मैं कितना बड़ा भाग्यशाली सम्राट हूं, मेरे राज्य में कितनी सुंदर सुंदर युवतियां हैं, सुहृदो नकुला जो मन के अनुकूल हैं, सदबांधवा प्रणयन भृगृश्य भृत्या मेरे बंधु बांधव सगे संबंधी मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, हमेशा दुख सुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरे आगे पीछे चलते हैं, कोई तकलीफ हमको नहीं होने देते। सदबांधवा प्रणयन भृगृश्य भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तुर अलास्तुर अंगा, मेरे घोड़े मेरे हाथी कितने सुंदर हैं, मेरा महावत कितना सुंदर है, मैं महल के गेट से निकलता हूं तुरंत महावत हाथी लेके खड़ा रहता है, अपने ड्राइवर और गाड़ी की प्रशंसा कर रहे थे। तो ये तीन चरण तो श्लोक के लिखे, चौथा चरण याद नहीं आया। अब रात भर सोचते रहे क्या लिखूं क्या लिखूं। अब वो चोर सोच रहा था कि कब सोएगा, राजा भोज सोते नहीं, गुनगुनाते जाते चेतो हरा युवत सुहृदो नकुला सद बांधवा प्रणयन भृगृश्य भृत्या गर्जन्ति दन्ति निवहास्तु अलास्तु रंगा, चौथा चरण क्या लिखूं चौथा क्या। और पूरी रात बीत गई, सुबह के चार पांच बज गए, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, अब चोर समझा अब तो उजाला हो जाएगा, चोरी का मौका है नहीं। तो चोर ने खटिया के नीचे से कहा लिखो चौथा चरण मैं बताता हूं, सम्मीलने नयन यौन ही किंचित अस्ति, ऐसा लिखो। और इस चरण का मतलब क्या है कि हे राजा भोज तुमने 3 लाइन में जो कुछ लिखा अपने बारे में, अपने राज्य के बारे में, प्रजा के बारे में, और चौथे चरण में लिखो कि जब तुम मर जाएगा, तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, ये सब तुमको छोड़ के चले जाएंगे, लिखो। और चोर खटिया से बाहर आ गया और कहा, मैं तो यहां तुम्हारा माल साफ करने आया था, तुम सोता नहीं रात भर। राजा ने कहा, तुम चोर है, वैसे तो तुमको दंड मिलना चाहिए, लेकिन तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है, इसे जो चोरी करके भी तुम नहीं पा सकता था, उससे डबल दे दूंगा मैं तुमको। तो खूब पैसा दिया। तात्पर्य है, महाराजा ययाति भोग करते हैं। महाराजा ययाति भोग नहीं करते, भागवत में ऐसे लोगों का नाम नहीं आता, हमको शिक्षा देते। पंचम स्कंद में महाराज जड़ भरत की कथा है, विश्व के सम्राट, पूरा राजपाट छोड़ करके हरिद्वार में भजन करते हैं, हिरण के बच्चे के चक्कर में आ जाते, हमको शिक्षा देते हैं कि मुझ जैसा सम्राट जो भूमंडल का राजा हो, सब कुछ छोड़ के भजन करने लगा, एक हिरण के चक्कर में मेरा भी पतन हो सकता है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं, मैं इतना भजन करता हूं, मैं 64 माला जप करता हूं, मैं एकादशी निर्जला रखता हूं, लेकिन दूसरे की जड़ काटना नहीं छोड़ना है, निंदा स्तुति चालू है। भुक्ति मुक्ति भोगवांछा यदि मने है, साधन करी ले प्रेम उत्पन्न न हो। भक्ति के 8 पिलर हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम, ये 8 पिलर हैं, साधन है। भक्ति का फल क्या है? चित्त शांत होना चाहिए, निंदा स्तुति नहीं, कृषि से ईर्ष्या भाव नहीं, दुख नहीं, चित्त शांत रहना चाहिए, सबका हितैषी। अगर हम ये सब भजन करते हैं फिर भी हमारे अंदर ये भाव है, रयाति जड़ भरत, ये प्रसंग हमको बताते हैं, जब ऐसे बड़े बड़े राजाओं का पतन हो गया तो हमारा नहीं होगा। शिक्षा दे रहे हैं हम। सौभरी मुनि, उनकी कथा भी सूरी वंश में आती है, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसे तपस्वी हैं कि बाहर तपस्या करते, लोग दर्शन करने आते, प्रणाम करते, उनको देख करके मन खराब हो जाता, पानी के अंदर चले गए तपस्या करने, सोचा उधर कोई नहीं आएगा, उधर भी देखा कि मछला मछली घूम रहे थे दोनों मियां बीवी। सवरी मुनि के मन में आए, देखो ये मछली कितना आनंद ले रही है, मैं भी आनंद लूं। लेकिन बूढ़े, दांत नहीं, गाल पिचके हुए, खोपड़ी सफेद हो गई। राजा मानधाता के महल में गए, मानधाता की 50 राजकुमारियां थी बेटियां, और राजा से कहा, एक लड़की हमको दे दो। जाते ही अब राजा ये तो जानते हैं बहुत बड़ा तपस्वी है, लेकिन ये भी जानते हैं कि हमारी कोई बेटी इनसे शादी करेगी नहीं, क्योंकि बूढ़े हैं, बाहर की चमड़ी तो ठीक होनी चाहिए ना, चमड़ी का धंधा है कि नहीं दुनिया में, स्किन का धंधा है, जिसकी स्किन अच्छी है। तो मानधाता ने कहा, मानधाता ने विचार किया, अगर मैं सीधे सीधे तलाक जवाब दे दूंगा कहीं श्राप न दे दे तपस्वी तो आदमी, तो राजा ने राजसी चाल चली, कहा आप खुद जाके मेरी बेटियों से पूछ लो, अगर कोई करना चाहती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं कर लूंगा। जब राजकुमारियों के भवन में गए तो राजकुमारियों ने कहा, तुम बूढ़ा आदमी से हम क्यों शादी करेंगे, दिमाग खराब है हमारा, कोई राजकुमार हो, हट्टा कट्टा मजबूत हो तो हम सोच सकते हैं। सौबरमुन ने कहा मैं अभी राजकुमार बन के आता हूं। अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, प्रकट हुए, क्या सेवा, कहा तुरंत जवान होना चाहते हैं। बिंदु सरोवर गुजरात में अश्विनी कुमार ने कहा इसमें डुबकी लगाओ, सौबरमुन ने डुबकी लगाई, बाहर आए सुंदर राजकुमार हो गए। फिर गए मानधाता के महल में, सीधे राजकुमारियों के भवन में घुस गए, कहा कि आप करोगे, पहले एक भी लड़की तैयार नहीं हुई, या 50 के 50 बोली हमको यही चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा हट। मानधाता की 50 बेटियों से विवाह किया, खूब भोग भोगे, नाती पोते महल। एक दिन अपने महल के बगीचे में बैठे थे, विचार किया इतना बड़ा तपस्वी में किधर आ गया है, तो ध्यान किया, तो ध्यान में क्या देखा, एक वैष्णव के प्रति अपराध किया है। भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज श्री प्रभुपाद जी ने जो श्लोक लिखा है सौभरी मुनि पे, उसकी टीका में लिखा है कि भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं ऐसा कि सौभरी मुनि से एक बार वैष्णव अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ, एक गरुड़ मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था और सौभरी मुनि ने मंत्र बल से उसके मुंह से वो टुकड़ा छीन लिया मांस का। विष्णु का वाहन होने की वजह से वो वैष्णव है, शरीर गरुड़ का होने की वजह से उसका खान पान मांस है। उस वैष्णव अपराध का फल हुआ कि सौभरी मुनि का पतन हो गया। इसलिए भगवत भक्ति का मतलब है किसी वैष्णव के प्रति, संत के प्रति, महात्मा के प्रति अपराध ना हो। सती प्रसंग भागवत में दक्ष प्रजापति की बेटी, दक्ष प्रजापति ने नारद जी के प्रति अपराध किया है, क्या पहले कहा मेरे बच्चों को पढ़ा दो, वो भी कहा इनको विद्या पढ़ा दो, और नारद जी ने विद्या पढ़ाई, पहले 10,000 लड़कों को दिया, कहा इनको विद्या पढ़ा दो। विद्या का मतलब क्या है, भगवान को जानना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा परानुरक्ति ईश्वरे तत्त्वमसि। वेदांत के सूत्र हैं। नारद जी ने कहा तुमने विद्या पढ़ाने की बात कही, मैं विद्या पढ़ाऊंगा सबको, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पढ़ा दिया, और सबके 10,000 लड़के कमंडल पकड़ के जंगल में सन्यासी हो गए। तो दक्ष प्रजापति ने कहा एक तो घर आ जाता सब चले गए, फिर 1,000 लड़के फिर दिए, इनको विद्या पढ़ा दो। नारद जी ने उनको भी विद्या पढ़ाई, सब जंगल चले गए, पूरा खानदान खाली कर दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया, एक जगह टिक नहीं सकेगा तू। क्यों श्राप दिया, क्योंकि एक जगह टिकेगा 4-5 मिनट किसी से बात करेगा तो बुद्धि फेर देगा उसको। नारद जी ने कहा जिसको तुम श्राप कहते हो मेरे लिए वरदान है, मैं एक जगह पर पड़ा पड़ा बंबई में पड़ा रहता था, घूमता रहूंगा, तो कभी उनको महीना 2 महीना आराम करना होता सीधे द्वारिका चले जाते, क्योंकि भगवान के धाम में किसी का श्राप जाता नहीं है, प्रवेश मना है उसका। भगवान को ये बात पता लगी मेरे नारद भक्त ने इतना अच्छा काम किया, उसके लड़कों को सन्मार्ग बताया, भगवत भक्ति के मार्ग पर लगाया, और दक्षिणा में क्या दिया, श्राप। और भगवान ने दंड दिया दक्ष प्रजापति को। दंड कैसे देते हैं भगवान, लट्ठे से थोड़ी मारते हैं, बुद्धि फेर देते। किसकी बुद्धि फेरी, दक्ष प्रजापति की बेटी सती की बुद्धि फेर दिया, वो शिवजी से प्रेम करती है और ये शिवजी से नफरत करता है दक्ष प्रजापति। बाद की कथा आप जानते हैं, सती दक्षिण भारत से कथा सुन के आ रही थी शिव जी के साथ, नासिक पंचवटी से आ रहे थे वो लोग, और भगवान लीला कर रहे थे राम जी, उनकी सीता का हरण हो गया, रो रहे थे उधर। तो सती जी, शंकर जी ने प्रणाम किया भगवान को, सती जी ने कहा कि आपने किसको प्रणाम किया, कहा कि मैंने इष्ट देव को प्रणाम किया। कौन है इष्ट देव? यही है जो रो रहे हैं। तो सती ने कहा क्यों रो रहे हैं, कहा इनकी पत्नी का हरण हो गया है। तो सती ने कहा ये तो अंतर्यामी भगवान है, इनको मालूम नहीं इनकी पत्नी कौन ले गया। भगवान ने कहा, शंकर जी ने कहा सब मालूम है इनको, ड्रामाबाजी कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं ड्रामाबाजी? लीला इसलिए कर रहे हैं कि तुम और हम जैसे लोग इनका ड्रामा देखेंगे तो हमारा ड्रामा खत्म होगा, इसलिए कर। सती ने कहा नहीं नहीं, ये तो पत्नी का हरण हो गया ये कामी व्यक्ति का लक्षण है, ये कोई भगवान का लक्षण नहीं है। और बाद में वेश बदल के गई सीता बन के, और उसे ज्ञान हुआ कि भगवान है। और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में बिना बुलाए चली गई, वहां अपना अपमान देख करके, महादेव जी के यज्ञ का भाग न देख करके अपमानित हुई, और योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। और बाद में शंकर जी ने पूरा यज्ञ विध्वंस करा दिया अपने दूतों को भेज कर। शुरुआत कहां से हुई? वैष्णव अपराध से। इसलिए भक्ति का फल क्या है? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस भूमंडल में कितने लोग भटक रहे हैं, कोई भाग्यशाली है जिसको भगवान के नाम का बीज मंत्र मिलता है, भक्ति मिलती है, सेवा मिलती है। इसलिए कामनाएं हमेशा कभी पूरी नहीं होती, महाराज ययाति के प्रसंग से शिक्षा मिलती है। कामनाओं का दमन नहीं किया जाता है। भगवान दशम स्कंद में जितने भी लीला करते हैं, कंस द्वारा भेजे गए जितने भी राक्षस हैं सबको मार देते हैं, लेकिन काली नाग को नहीं मारते, क्योंकि काली नाग इंद्रियों का प्रतीक है। काली नाग को कहते हैं कि ये जमुना जी का ये जगह छोड़ करके तुम दूसरे द्वीप में चले जाओ, मारते नहीं उसको, उसके फन को चल देते हैं लेकिन जान से नहीं मारते। इसलिए इंद्रियों का दमन नहीं किया जा सकता, भोग वासनाओं को मारा नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, डायवर्ट किया जा सकता है। अगर वासनाएं संसार के पत्नी हैं, वही वासना हम भगवान की सेवा में लगाते। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच चीजें, इन्हीं पांचों चीजों में जीव फंस जाता है। रूप में किसी का सुंदर रूप देखा, रस टेस्ट में, गंध सुगंध सूंघने में, शब्द किसी की बातों को सुना, स्पर्श टच करने से। अगर इन पांचों सिद्धांतों को हम भगवान की सेवा में लगाए, रूप संसार का रूप ना देखें, भगवान का देखें। राधा राजबेरी भगवान कितने सुंदर हैं, इनके सामने किसी मूवी स्टार को लाओ कैसा दिखेगा? मच्छर जैसा दिखेगा, दिखेगा तो उधर देखेंगे अरे कितना सुंदर, इधर देखो ना, फिर उधर देखो, फिर मच्छर की तरफ देखो, फिर भगवान की तरफ देखो, रूप भगवान की तरफ चला जाए। रस भगवान का चरणामृत नैवेद्य चढ़ाया हुआ प्रसाद, उसका टेस्ट। गंध भगवान के चरणों की माला, उनके चरणों के फूल का गंध लेना चाहिए। जब कोई पुजारी फूल देता है सूंघते हैं ना, चले जाते। स्पर्श भगवान के चरणों का स्पर्श, जिन चरणों का स्पर्श करने से जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। अगर उसी तरह हम संसार का स्पर्श करेंगे, संसार के किसी जीव का स्पर्श करेंगे, फिर आवागमन के चक्र माना पड़ेगा। और शब्द, शब्द क्या है? भगवान की कथा, उनका कीर्तन। अगर ये शब्द हम सुनेंगे तो दुख सुख ये आवागमन के चक्र से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा अनुदर्शनम, ये चार तरह की बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। अगर इसके बदले हम संसार का शब्द सुनेंगे, फिर चक्कर में, फिर चक्कर। इसे आवागमन के चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान का हरिनाम संकीर्तन और भगवान की कथा, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम राम, और भागवत की कथा, कृष्ण की लीला, उनके भक्तों की लीला का श्रवण हम करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न कमेंट्स है? एनी क्वेश्चन एनी कमेंट्स?
हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
जब सौभर्ग से तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर, वही आसपास में गरुड़ आकर वहां मछलियां खा जाता था, तो सारे मछली लोग ऋषि के शरण में गई और बोला कि आप महात्मा होते हुए ये हमें खा जाता है, आप हमारी रक्षा करिए। तब उनको रक्षा करने के लिए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, अगर यहाँ आएगा गरुड़ तो मृत्यु को प्राप्त होगा। अरे प्रभु की लीला के अंतर्गत ये सब होना था।
लेकिन सौभर मुनि कैसे फंस गए मछली के चक्कर में?
हम लोग को शिक्षा देने के लिए
वो आता था जाता, लेकिन सौभर मुनि का जो चित्त भटका वो मछली और मसला को देख के ना, वो गए थे रक्षा करने लेकिन खुद ही फंस गए। और कोई कमेंट्स? हरे हनुमान बाबू हमारे शिक्षा गुरु हैं, इन्होंने भक्त बनाया था हमको, भक्त डायरेक्ट।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो आपने कहे कि भागवत में जितने भी राजाओं का नाम आया है वो सारे पूरे विश्व के राजा थे, लेकिन जब हम रामायण में देखते हैं तो जिस समय दशरथ जी थे चक्रवर्ती सम्राट, उस समय रावण का भी राज था, तो ऐसा कैसे हो फिर?
तो रावण का राज था, ज्यादा दिन रहा, बाद में तो उन्हीं के पक्ष में आ गया ना। और दो चार दिन के लिए कोई चोरी करके माल ले जाए, कितने दिन का सेट रहेगा? तो रावण था, चार एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती, बाद में तो कोई बल्ब जलाने वाला भी नहीं रहा ना। राज्य तो अयोध्या वालों का ही है, राम जी का है ना, उसने आतंक मचा रखा था तो थोड़े, बाद में तो सब खोना ही पड़ा। और कोई?
हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी आप बोले कि नारद जी को जो अभिशाप मिला तो द्वारका चला जाते हैं, और द्वारका में जो उनको अभिशाप से कुछ काम नहीं करता है, तो वही द्वारका में है कृष्ण का पुत्र लोग को, सांब को दुर्वासा मुनि ने ही अभिशाप दिया।
वो भगवान की इच्छा थी।
अरे वही तो हो गया
वो जो ऋषियों ने सांब को श्राप दिया है, वो पेट बढ़ा के ले गया था ना, तो उसने कहा क्या होगा, लड़का होगी लड़का होगा, वो तो कपड़ा बांध के ले गए थे, तो ऋषियों ने कहा ना लड़का होगा ना लड़की होगी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा। तो भगवान चाहते हैं कि जब मैं यहां से अंतर ध्यान हूं, तो भगवान चाहते हैं मुझसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो भी अंतर ध्यान हो। तो भगवान जब अंतर ध्यान हुए, द्वारिका डूब गई, यहां तक कि उनका रथ भी उड़ के चला गया ऊपर। तो भगवान के धाम के अंदर की जो लीला है या कोई घटना है तो भगवान की इच्छा से है, लेकिन जो बाहर की घटनाएं हैं वो घटना का प्रभाव उनके लोग धाम में नहीं जाता। हो गया। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।
वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं